Hare Krishna. So we have with us His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj. Yesterday, for those who were not there, I'll read out the brief introduction of Maharaj. His Holiness Bhakti Purushottam Swami Maharaj first joined ISKCON Mayapur in 1978. He was initiated by His Holiness Jayabhataka Swami Maharaj. From then on, he served in various capacities. First as a Sankirtan leader at Calcutta and in the boat preaching party in Mayapur, his managerial position as the temple president in Bhubaneswar, Odisha was there from 1983 to 87, and in 1987 he became the general manager in Mayapur, and under his supervision there was Gita correspondence course, college preaching, book distribution, everything developed. Now he has GBC zonal assignments in Eastern India, Bangladesh, Korea and Nepal. He is the co-GBC and co-zonal secretary for North and South Korea, India, Arunachal Pradesh, Mayapur, West Bengal, including Puri, North and Western Odisha, Bangladesh, Bihar, Jharkhand, Nepal, Sikkim, Assam, Andaman and Nicobar Islands, Bhutan, Meghalaya and Tripura. Maharaj travels to many other parts of the globe also, to encourage everyone in their spiritual life. Maharaj has written various books also. Sri Kshetra Parikrama, The Final Call, Death, a book on Krishna pastimes, like Srimati Radharani, Sri Navdeep Parikrama, Damodar, Mystery of Rathyatra, Who I Am, Who God Is, Maya, Answer to Five Questions of Life. Maharaj preaches in Odia, Hindi, English and Bengali languages. Maharaj is actually an integral part of the organization of the headquarters of ISKCON in Mayapur, where he is based, and he is further developing both local and international preaching efforts in many novel ways, announcing the yearly Navadvip Dham Parikrama, opening up an initiative of tribal care and encouraging numerous Namhatta centers throughout the West Bengal. Maharaj is, yesterday as you must have heard, he is full of bhakti for Lord Jagannath. In the recent Kartik Yatra, Radhanath Maharaj was saying that from the very womb of his mother, Maharaj is a devotee of Lord Jagannath. And yesterday his heart's bhakti was exuding and we were getting filled up. And today we will continue to have that nectar from his lotus lips. So let us, without any delay, let us welcome Maharaj by three times loudly chanting, Hari Bol! Hari Bol! Hari Bol!
Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Gopi Jana Ballabha Giribara Dhari, Jaya Gopi Jana Ballabha Giribara Dhari, Jaya Yashoda Nandana Bhaja Jana Ranjana, Yashoda Nandana Bhaja Jana Ranjana, Jamuna Tera Banachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, జశల ప్రభుపాదకి, హరినామ సంకీర్తనకి, జయ సమవేత భక్త బృందాకి గౌర ప్రేమానందే. ఓం అజ్ఞానతిమిరంధస్య జ్ఞానంజనా శలాకయా చక్షురుమిళితం జయన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమావం విష్ణు పదాయ కృష్ణ ప్రస్థాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినే ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణీ ప్రచారిణే నిర్విశేష సున్నవాదీ పాశ్చాత్య దేశత వంశాకల్పతరుభ్య కృపాసింధుభైవ చ పతితానం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. నీలాచల నివాసాయ నిత్యాయ పరమాత్మనే బలభద్ర సుభద్రాభ్యాం జగన్నాథాయ తే నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది శ్రీ గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ 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 హరే హరే. ముఖం కరోతి వాచలం పంగు లంఘయతి గిరిం జత్కృపా తమహం వందే పరమానంద మాధవం శ్రీగురుదినతరిణం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. So, what we do, because we have limited time, so I will speak on Jagannath few selected sweet pastimes, then I will give a presentation on tribals, because Jagannath is related to tribals, you know, Jagannath is tribal god. And see how great is Jagannath culture. All over India, only Brahmanas, they serve the deities. But Puri is exception, where high-class Brahmanas serve the deities, and the low-class Savaras. You know Savaras? You know Savar? Savar? Oh, Hindi. So, मैं कुछ जगन्नाथ का लीला बताऊंगा, फिर कुछ ट्राइबल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जगन्नाथ ट्राइबल का भगवान है. तो इससे क्या महात्म्य है, क्या महिमा है ट्राइबल का भगवान से. देखो, ये जगन्नाथ का महिमा इतना श्रेष्ठ है, सारा भारतवर्ष में भगवान का मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण लोगों ने ही सेवा पूजा का मौका प्राप्त होते हैं. लेकिन जगन्नाथ मंदिर इससे व्यतिक्रम है. जगन्नाथ मंदिर एक ही मंदिर है जिधर हाई क्लास ब्राह्मण लोग भी भगवान का सेवा करते हैं, और लो क्लास सवर, सवर नाम सुने हैं ना, सवर हाँ, वो क्या है, ट्राइबल है हाँ. नहीं, ये ट्राइबल लोग तो हम लोग के साथ सोचते हैं ट्राइबल लोग अस्पृश्य है, छोटा जाति का है. लेकिन ये सवर जाति जो ट्राइबल होते हैं, वो लोगों को बीच में भी ये छोटा है. ट्राइबल लोग जो आदिवासी लोग होते हैं, सबर को छूने से वो लोग नहाएंगे. इससे आप समझ लीजिए कितना छोटा है ये लोग, और ये जगन्नाथ का कितना प्रिय है. ये ब्राह्मण लोग 11 महीना जगन्नाथ का सेवा करते हैं, ये ट्राइबल लोग जो होते हैं विश्वावसु का परिवार का होते हैं, उनको द्वैतापति बोलते हैं. एक महीना का मौका मिलता है. कब सेवा करते हैं भगवान का मालूम है? जब भगवान का बुखार होते हैं, तब कोई ब्राह्मण लोग नहीं पाएंगे. ये ट्राइबल लोग का मौका प्राप्त होता है. क्यों? देखो, जब आप सुस्त है, सब कुछ ठीक है, आपको मदद करने के लिए कि आपका फ्रेंड्स ऑफिसर्स बस सब आते हैं. जब आपको बीमार होता है, तब कौन देखभाल करता है? बस देखते, घर वाला देखते है ना, हाँ, घर वाला देखता है। तो ये सबर लोग भगवान का भक्त नहीं है, ये भगवान का सेवक नहीं है, ये भगवान का परिवार का लोक होता है। ये जगन्नाथ का महिमा है। जगन्नाथ संस्कृति कितना श्रेष्ठ, हाँ, तो सबसे निकृष्ट है। भगवान मानते तुम मेरा परिवार का हो। जब जगन्नाथ का नवकलेवर होता है ना, ये ट्राइबल लोग जो आदिवासी विश्वावासी परिवार का जो होता है, ये लोग को दैत्यापति लोग जैसे किसका घर में किसका मौत हो जाता है, से श्राद्ध करते हैं, नहाते हैं, ऐसा ही करते हैं। ये परिवार का लोक होता है, इसीलिए दैत्यापति बोलते हैं। दैत्य का मतलब क्या है मालूम है? दैत्य राधे जय जय माधव दैते, क्या है? राधा रानी तुम माधव का प्रिय हो। ये ब्राह्मण प्रिय नहीं है, ब्राह्मण पति महापत्र है, बहुत बड़ा डिजिग्नेशन होता है, लेकिन जो सवर अस्पृश्य होता है उनको भगवान कैसे माना? तुम्हारा प्रिय हो, दैत्य दैत्य दैत्यापति, ये भगवान को बहुत प्रिय होता है। ऐसा हम लोग देख पाते हैं भी जगन्नाथ संस्कृति में, जो चीज किधर भी नहीं ये जगन्नाथ मंदिर में होता है। अस्पृश्य सवर लोग जगन्नाथ को सेवा करते हैं, और भारत में जितना सारी मंदिर है, हर मंदिर से का अंदर से उत्सव होता है, अनुष्ठान होता है, तो विजय विग्रह उत्सव विग्रह बाहर आते हैं। जगन्नाथ मंदिर एक ही विष्णु मंदिर, इधर जगन्नाथ स्वयं अल्टर से बाहर आता है। हमारा तिरुपति में नहीं होता है, श्रीरंग में नहीं होता है, नाथद्वार में नहीं होता है, तो इधर ही होता है। ये जगन्नाथ का ये महिमा है। तो इसीलिए हम लोग सोचते हैं आजकल इस कन में, तो हम लोग भी थोड़ा ट्राइबल लोगों का सेवा करेंगे। ये जगन्नाथ का आदि उपासक होते हैं ये ट्राइबल लोग, तो ट्राइबल लोगों ने तो हम लोग तो ये लोग को केयर किया नहीं, लेकिन क्रिश्चियन लोग आके नॉर्थ ईस्ट में पूरा स्टेट भर 99% कन्वर्ट कर लिया। एक लोग सब कट्टर हिंदू थे, लेकिन हमारा हिंदू लोग उन लोग को घृणा किए, उन लोग को केयर किए नहीं, तो पूर्ण सुजोग ले लिए। ऐसा भी हो गया नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, पूरे से पूरे क्रिश्चियन बन गए, तीन स्टेट हो गया, और दूसरा स्टेट भी ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। जगन्नाथ का कथा सुनने से जितना आनंद आएगा, और ट्राइबल कथा सुनने और ज्यादा आनंद आएगा आप लोगों को। भगवान से भगवान लोगों का ज्यादा इंपोर्टेंस होता है ना। तो जगन्नाथ के बारे में मैं दो तीन हिस्टोरिकल इवेंट्स आपको बताऊंगा। पहले तो ये हुआ जब अशोक, आप लोग मालूम है कैसे अशोक बुद्धिस्ट बन गए थे। अशोक जब उत्कल आक्रमण किए, ये बुद्धिस्ट मंग उपगुप्त था, वो अशोक को प्रीचिंग किया, तो उसे भुवनेश्वर नजदीक एक नदी होता है दया नदी, वो खून में भर गया था, इतना विराट बड़ा युद्ध हुआ था। तो उसको समझाया, देखो अशोक, तुम जो एक कप पर एक राज्य को जय करते हो, पर अस्त्र प्रणोदित जय जय नहीं है, अस्त्र का दर जगह जय, तुम लोगों का हृदय को जय नहीं कर पाते हो। जैसे अशोक कन्वर्ट हो गए, तो उसके बाद बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार हुआ। बुद्धिस्ट लोग उस समय खुद सत्य थे, सत्यवादी थे, निष्ठा पर थे, बहुत ऑस्टियर भी थे, तो लोगों ने खूब प्रभावित होते थे। तो उससे उस समय का राजा मोहन देव ना क्या भूल गया, उनका पत्नी खूब प्रभावित हुई, ये लोग सत्य है, बुद्धिस्ट बुद्ध फॉलोअर्स है। तो रानी ने विचार किए जे जगन्नाथ का सेवा पूजा का भार ये बुद्धिस्ट लोग को दिया जाएगा। राजा ने सोचा नहीं, ये ब्राह्मण लोग ने पूजा करेंगे। तो रानी बोला नहीं बुद्धिस्ट करेंगे, राजा बोला नहीं ब्राह्मण लोग करेंगे। तो दोनों ने एक विचार किया, ठीक है हम ब्राह्मणों को बुलाएंगे, बुद्धिस्ट को बुलाएंगे, परीक्षा किया जाएगा, हाँ, किसका अंदर ज्यादा शक्ति है। तो परीक्षा में जो पास होंगे उनको जगन्नाथ का सेवा पूजा दिया जाएगा। तो कैसा परीक्षा होगा ना, दोनों ग्रुप को हम लोग बुलाएंगे। लोग ऐसा विचार किया, एक कलश होता है, हाँ, कलश का अंदर में एक स्नेक सांप को रखा, उसको बंद कर दिया। तो वो लोग परीक्षा क्या जाएगा, दो ग्रुप आएंगे, जो बोल पाएंगे इसका अंदर में क्या है तो उनको सेवा पूजा दिया जाएगा। तो अनाउंस कर दिया तो हजार हजार लोग आए देखने के लिए। अभी जगन्नाथ का सेवा पूजा ब्राह्मण लोग करेंगे ना बुद्धिस्ट लोग करेंगे। देखिये जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बहुत रहस्यपूर्ण होता है, कब से शुरू हुआ एग्जैक्टली, ये किसी का भगवान है ना सबका भगवान है, इसको जानकारी करना बहुत मुश्किल होता है। बुद्धिस्ट लोग मानते हैं ये बौद्ध है, तो राम भक्त आते हैं उनको राम स्वरूप में दर्शन देते हैं, गणेश भक्त गणपति भट्ट आए तो गणेश स्वरूप में दर्शन किए, चैतन्य महापुरुष आए तो जब जगन्नाथ को दर्शन नहीं करते थे, वो जगन्नाथ का श्याम सुंदर रूप को दर्शन करते थे, क्योंकि जे जथा मंग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि हम। तो अभी परीक्षा होगा, ब्राह्मण लोग सेवा पूजा दायित्व लेंगे ना बुद्धिस्ट लोग लेंगे, तो सब बुद्धिस्ट बड़ा बड़ा मंक लोग आ गए, ब्राह्मण लोग भी आ गए। हाँ, तो घड़ा के अंदर में एक सांप को रखा, पूछा बुद्धिस्ट लोग को, तुम बोलो इसका अंदर में क्या है, वो लोग ने बोला इसका अंदर में एक स्नेक सांप है। तो रानी बहुत खुश हो गई, हाँ, क्योंकि रानी को तो मालूम है, रानी चाहते बुद्धिस्ट लोग सेवा पूजा लग खुश हो गए, इसका अंदर सांप है। तो ब्राह्मण लोगों ने देखे तो ये लोग तो बोल दिए सांप है, तो हम लोग अभी सांप बोलेगा क्या, इसका कुछ मर्यादा नहीं है। लेकिन ब्राह्मण लोग तांत्रिक थे, हमारा ब्राह्मण लोग तांत्रिक थे, उस समय तंत्र का बहुत प्रभाव शक्तिशाली प्रभावशाली थे वो लोग, तंत्र इतना अच्छा तांत्रिक थे, वो तंत्र का द्वारा वो लोग ने सोचा हम लोग को दूसरा बोलना चाहिए, सांप नहीं दूसरा कुछ है, तो अंदर तो सांप ही है दूसरा कैसे बताऊंगा। तो लोग क्या क्या, एक तंत्र का द्वारा एक कालांतक मंत्र है, वो मंत्र इतना पावरफुल था, वो मंत्र वो लोग उच्चारण के और घड़ा का अंदर में सांप था वो उधर भस्म हो गया, हाँ भस्म के आशेष टर्न इंड आशेष, आशेष को क्या बोलते हैं हिंदी में, राख, और राख बन गया। तो फिर ब्राह्मण लोगों ने बोला नहीं नहीं इसका अंदर में सांप नहीं, इसका अंदर राख है। तो रानी और खुश हो गई, क्योंकि रानी को तो मालूम है ये सांप है, उसको अंदर बीच में क्या होता है मालूम नहीं, तो और खुश हो गया। तो बुद्धिस्ट लोग सांप बोला, ये तो राख बोलते हैं, तो भूल बोलते हैं, बुद्धिस्ट लोग सेवा पूजा पाएंगे। तो ब्राह्मण लोग नहीं इसका अंदर सांप नहीं राख है, तो खोल के देखो। तो जो खोल के देखा वो सांप नहीं था, हाँ वो आशेष राख था। तो रानी ने बहुत गुस्सा किया राजा के ऊपर, ये क्या बात है, आपको तो मालूम है इसका अंदर में सांप, हम लोग दोनों देख के रखा है, किसी को मालूम नहीं था, तुम भी देखा है। तो ये जो ब्राह्मण लोग होते हैं तांत्रिक होते हैं, ये लोग सत्य को झूठा बनाते हैं मिथ्या करते हैं। अरे बुद्धिस्ट लोग सत्य है, वो सच्चा बात बताया, हाँ ये सत्य को मिथ्या मिथ्या को सत्य ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो राजा ने बोला नहीं, राजा ने बोला था जब बुद्धिस्ट लोग का जय होगा तो ब्राह्मण को मेरा देश से भगाएगा मार के, ब्राह्मण का जय होगा तो बुद्धिस्ट को मार के भगाना है। तो ऐसा हुआ राख है, तो राजा ने तो राजा तो ब्राह्मण का सपोर्टर था, तो राजा ने बोला नहीं नहीं हम लोग क्या देखा उससे कुछ नहीं, लोगों ने क्या देखते हैं अभी देखा। लोगों ने देखते इधर सांप नहीं है इधर राख रखा है, इसलिए ब्राह्मण का जय हो गया। तो डिक्लेयर कर दिया ब्राह्मण लोगों ने सब मार मार के बुद्धिस्ट को भगाए भगाए। तो बुद्धिस्ट लोग तो खूब उस समय के बुद्धिस्ट लोग सत्य लोग थे, हाँ और उनका साधना का शक्ति भी अच्छा था। तो वो लोग बहुत हैरानी हो गए, तो उनका जो लीडर था महाप्रज्ञा को बताए जैसा हालत खराब है हम लोग का। तो महाप्रज्ञा ने आया तो राजा को बोला देखो ये हम लोग बुद्धिस्ट हम लोग सच बात बताते हैं, और तुम ऐसा एक ऑर्डर दिया बुद्धिस्ट लोग को वो निरीह है, दोष नहीं कुछ भी दोष नहीं है लोग का, तुम ब्राह्मण लोग को मारते हैं। तो मैं तुमको साफ देता हूं तुम जो मुंह से ऐसा ऑर्डर दिया बुद्धिस्ट को मारने के लिए तुम्हारे मुंह में हाँ क्या होगा अल्सर हो जाएगा। अल्सर क्या है, छाली न या टंग में, और उसमें कीड़ा हो जाएगा तुम्हारे मुंह में, अल्सर होगा कीड़ा हो जाएगा, ऐसा श्राप दे दिया। तो राजा बहुत भयभीत हो गया, ब्राह्मण लोग में भयभीत हो गए। सेवा पूजा तो ब्राह्मण लोग को मिला वो ठीक है, लेकिन वो ब्राह्मण लोग जो बुद्धिस्ट लोग को मारा ये ठीक नहीं था। तो आस्ते आस्ते फिर राजा ने देखा उनका जिह्वा में एक छोटा सा पिंपल जैसा निकला, तो बड़ा होके बहुत बड़ा हो गया। और राजा कुछ खा नहीं पाया, बहुत कष्ट हुआ था, रात को सो नहीं पाता था। रानी उनके पास रहती थी और सेवा करती थी। एक समय में देखा गया उनका मुंह में कीड़ा भी हो गया राजा। तो एक दिन रात को राजा ने देखा वो महाप्रज्ञा आया, बुद्धिस्ट मंक आके बोला, देखो तुम ऐसा भूल किया तो ठीक है, तुम गौतम को प्रार्थना करो, जगन्नाथ को प्रार्थना करो, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, हाँ जगन्नाथ की कृपा से ही तुम फिर आरोग्य हो जाएंगे। तो राजा रानी दोनों ने खूब जगन्नाथ को प्रार्थना करते थे। तो एक दिन रानी तो पास में बैठी थी, एक दिन वो थोड़ा सो गई थी, तो राजा ने स्वप्न में देखा जगन्नाथ आए। जगन्नाथ आके उसको बताए, हाँ जो तुम्हें ठीक नहीं कि बुद्धिस्ट लोग ऐसा मारा है, तो तुम मेरा भक्त हो इसलिए मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा ये बीमार तो ठीक सुधर जाएंगे, लेकिन मिथ्या बोलने से ऐसा हालत होगा, तो इसको लोगों को दिखाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, जो कलश में घड़ा में उस सांप को रखा था, उस सांप कोई घड़ा को वो पीतल का था, ब्रास का मंदिर का ऊपर रखो, सब लोग को सिखाने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलना, मिथ्या नहीं बोलना। तो अभी आप लोग जाएंगे वो कलश उधर रखा हुआ है, जब नेक्स्ट टाइम यू गो पूरी गर्भ मंदिर है, उसका मंदिर जगमोहन है, उसके सामने में नाट मंदिर है, जिधर आप लोग दर्शन करते हैं वो जो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ का पीछे भोग मंडप है, भोग मंडप का ऊपर वो ब्रास का जो कलश वाटर पॉट वो अभी भी उधर रखा हुआ है। तो जगन्नाथ ऐसा बोले और जगन्नाथ सपने से अंतर्धान हो गए। तो राजा जब जागा वो देखा उनका मुंह बहुत परिष्कार हो गया, एकदम कुछ बीमार नहीं। तो रानी को जगाए, देखो देखो मैं ऐसा जगन्नाथ को स्वप्न में देखा। जगन्नाथ ने बोले हाँ मेरे को से निर्देश दिए, तो देखा जगन्नाथ जो आए थे, जगन्नाथ का सिर में जो बिंदी था वो बिंदी उनका सज्जा पर पड़ा था। तो ये सही ऐसा जगन्नाथ का जो कुछ लीला होता है लगता है ये स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है इसलिए इसको मैं मानता हूं, इसीलिए क्योंकि जैसा कोई कोई भक्त आए थे, भक्त का लीला हुआ, भक्त का पर जगन्नाथ कैसा कृपा किए, भक्त का द्वारा जगन्नाथ मंदिर का पूरा सिस्टम भी बदल गया उस समय से। और वो लोग का परिवार का लोग, वो लोग जो मठ स्थापन के अभी भी है। सर मैं एक बात बताऊंगा, आप लोग गए हुए श्वेत गंगा देखे ना, श्वेत गंगा पूरी में श्वेत गंगा है, वो श्वेत गंगा का बहुत बड़ा महिमा होता है। त्रेता युग में श्वेत राजा वो श्वेत गंगा बनाए थे। तो एक बार एक ब्राह्मण जो पंडा का परिवार है, जगन्नाथ का सेवक थे, वो एक बार सुबह सुबह जाके वो श्वेत गंगा में नहाने के लिए डुबकी दिए। जो नहाने के लिए डुबकी दिए, डुबके पानी से जब जाग ऊपर आए तो देखा पूरी में नहीं है, क्योंकि श्वेत गंगा का साथ हमारा वो गंगा बहती है उसका कनेक्शन है। उन्होंने देखा वो गंगा का किनारे पर है, पहुंच गया। तो आश्चर्य में इधर कैसे आया वो सोचता है। तो कुछ समय बाद देखा एक औरत आया उनका तरफ, आज के बाद मैं तुमको शादी करूंगी। तो डर गया, नहीं नहीं क्योंकि पुरी का पंडा लोग जो होता है, पुरी का बाहर कोई लड़के को शादी नहीं करना, पुरी का अंदर में शादी करना है, पुरी का बाहर कोई लड़के को शादी करेंगे तो उसको भगवान का सेवा का मौका नहीं मिलेगा। तो डर नहीं मैं तुमको शादी नहीं करूंगा। तो लड़की बोला नहीं मैं जगन्नाथ का परम भक्त हूं, मैं जगन्नाथ को बहुत दिन तक प्रार्थना करती थी कैसा आपका सेवा मिलेगा, जगन्नाथ ने मेरे को सपने में आए और मेरे को बताए तुम कल सुबह जाओ गंगा का किनारे पर, जिसको पहला दर्शन होगा उसको शादी करो, तुमको जगन्नाथ का सेवा मिल जाएगा। ये तो बहुत इच्छा नहीं था, तो ऐसा बोला तो जबरदस्त उसको शादी किया। शादी करके एक दिन एक रात रोका, रोकने के बाद नेक्स्ट डे वो गंगा में नहाने के लिए आया। और सारा रात दिन भर के वो सोचते थे भगवान जगन्नाथ क्या मैं अपराध कर दिया, आपका चरण पर मेरा सेवा भी चला गया, अभी आप मेरे को जगन्नाथपुरी से इधर से निकाल दिए, इसे बहुत मनस पश्चाताप करता था। ऐसा करते हुए फिर गंगा में नहाने के लिए गया, तो गंगा में डुबकी दिया तो ऊपर आया, देखा पूरी में पहुंच गया। फिर तो बहुत खुश हो गया, अरे फिर पूरी आ गया। तो किसको कुछ बोला नहीं, क्या क्या हुआ कुछ बोला नहीं, वो सीधा जाके सेवा शुरू कर दिया। हाँ, सेवा पूजा शुरू कर दिया। बोलने से बाहर जाके शादी किया, बोलने से सेवा नहीं मिलेगा, तो सेवा करता था। तो कई साल बाद वो जगन्नाथ की सेवा करके तो बाहर आया, उधर सीढ़ी था स्टेयर केस, उसको देखा वो औरत उधर खड़ा है जिसके शादी किया था। तो औरत छुट कहा आया उसके पास, स्वामी जी स्वामी जी, मेरा स्वामी हो, पति पति देव बोला। तो ये पंडा ने बोला, क्या पति देव, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं, उसको मालूम है शादी किया, मैं तुम्हारा पति नहीं हूं। तो लड़की बोला, पति ने तुम मेरे को शादी किए गंगा के किनारे पर दिया था, नहीं देखो मैं तुम्हारा पुत्र है, ऐसा तुम्हें लेकर आया, देखो तुम जैसा देखने के लिए लगते हैं, ये तुम्हारा पुत्र है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है, मैं तुम्हें शादी किया नहीं। हाँ, उसको भगा दिया। तो बेचारी क्या करेगी, ये पूरी में घूमते थे। तो ये बात राजा का कान में पहुंचा, जैसा ये बाहर जाकर शादी किया, ऐसा बोलते हैं शादी किया नहीं। तो राजा ने बुलाया, ये औरत को बुलाया, बोला सच सच बात बताओ क्या हुआ। तो बात उन्होंने बताया, जैसा मैं जगन्नाथ का भक्त है, जगन्नाथ सपने में आए मेरे को, ऐसा बोले ये गया था, मैं इसको देखा गंगा के किनारे शादी किया। हाँ, अभी वो बोलते शादी नहीं ना, ये माता जी ने बताया, मैं नहीं बताऊंगी सही बात, क्योंकि मेरा पति का ये भय होता है, तो आप लोग सही बात क्या मालूम होने से उसको सेवा नहीं मिलेगा। तो राजा ने बोले, नहीं तुम सही बात बताओ क्या है, मैं सेवा से उनको वंचित नहीं करूंगा। तो बताया, हाँ बताया, यही ऐसा हुआ। फिर ब्राह्मण को पंडा को बुलाया राजा, तो बोला पंडा के सामने बताया सब, हाँ ये औरत बताया ऐसा ऐसा हुआ। पंडा बोले, नहीं नहीं ये सब झूठ बात है, कुछ भी सही नहीं है। तो और सब झूठ बात है बोला, तो ये औरत क्या किया, जो पंडा उधर था ना, उनको उत्तरी को उधर छूट गया था उत्तरी और अंगूठी ना क्या ऐसा छूट गया था, दो तीन चीज। तो उसको राजा को दिखाया, देखो ये सब इसका है, उधर छूट गया था। तो विचार क्या करेगा, तो राजा, हाँ मैं भूल किया था। तो राजा ने उसको माफ कर दिया, सेवा भी दिया। जब मैं लीला पढ़ा, मेरे को बहुत फनी लगा, कैसा है गंगा में इधर नहाया उधर निकल गया फिर आ गया, ये क्या हुआ, ऐसा लगता था। फिर बाद में मेरे को मालूम हुआ, जे वो जो लड़का जन्म हुआ जगन्नाथ मंदिर में 36 निजोग होता है, 36 ग्रुप्स ऑफ डिवोटीज वो सर्व करते हैं, 36 ग्रुप्स सेवा करते हैं। तो ये जो लड़का जन्म हुआ उनका क्या सेवा होगा, उनका क्या सेवा मिलेगा। इसलिए उस समय का राजा ने 37th सेवा सृष्टि की, इसका नाम है सावत निजोग। वो 36 निजोग बोलते हैं, इसका नाम देखा सावत निजोग। सावत मतलब उड़ीसा का भाषा में स्टेप मदर को सावत माँ बोलते हैं। तो सावत निजोग करके नया एक सेवा निकाला, तो उसी परिवार का लोग अभी भी है, वो लड़का का परिवार अभी भी है, उन लोगों को सेवा दिया गया। तुम जो जगन्नाथ मंदिर होता है, जगन्नाथ मंदिर के दो द्वार होता है, एक मेघनाथ पाचेरी होता है बाहर बेढ़ा आउटर कोर्टयार्ड, और एक कुर्म बेढ़ा होता है, कुर्म पाचेरी होता है इनर कोर्टयार्ड। तो उस समय से इस सावत निजोग जो लोग होते हैं वो लोगों को वो इनर कोर्टयार्ड का सेवा नहीं मिलता है, आउटर कोर्टयार्ड में जो मंदिर है उसमें सेवा करते हैं। और इस श्वेत गंगा का किनारे पर श्वेत माधव और मत्स्य माधव जो विग्रह है उनको सेवा करते हैं। तो जब मैं इसको सुना, मेरा विश्वास और बढ़ गया, ये सही बात है। मैं ये बोलना चाहता हूं, जब कुछ भगवान का लीला आप श्रवण करेंगे, आप लोगों मन में ऐसा आ सकता है, ये सही है ना सही नहीं है, ये सही है, क्योंकि जैसा मैं जो बुद्धिस्ट के बारे में बताया, हाँ ये हमारा जगन्नाथ मंदिर में एक मादला पांजी करके एक रिकॉर्ड मेंटेन करता है, डायरी मेंटेन करता है, वो मादला पांजी में ये रिकॉर्ड रखा है। और आज भी आप लोग जाके वो ब्रास का जो वाटरपट मंदिर के ऊपर रखा हुआ है, इसको आप लोग देख पाएंगे। तेसा जगन्नाथ के बारे में जो सब कुछ लीला बताते हैं वो बहुत तो सारे पुराण में है, और बहुत से पुराण में नहीं है क्योंकि अभी अभी बहुत लीला ऐसा होता है जो जनश्रुति में हम लोग सुन पाते हैं, और बहुत सारे लीला होता है जिसको मादला पंज में ये लोग लिख के रखते हैं। तो ये एक लीला बताया, तो मैं अभी एक लीला बताऊंगा। परमेष्ठी एक दर्जी था, जो लोग जगन्नाथ किताब पढ़े आप लोग सुने, मैं दो जगन्नाथ किताब किया, पहले एक जगन्नाथ किताब किया था, रिसेंटली न्यू जगन्नाथ बुक किया, उसमें और 20-30 न्यू पास टाइम्स उसमें जोड़ा। तो मुसलमान लोग जब शासन करते थे भारत का, उस समय का बात था, तो दिल्ली में एक दर्जी था टेलर, उनका नाम था परमेष्ठी। वो बहुत अगली कुचित देखने के लिए थे, और पीठी में पीछे में एक कुजो था उनका, कुजो क्या बोलते हैं, हंस, उबड़ी उबड़ी था हंस था, लेकिन देखने के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन सिलाई करने के काम में बहुत एक्सपर्ट थे, वो इतना अच्छा टेलर थे। तो दिल्ली का बादशाह भी उनका कपड़ भेजते थे, हाँ,